सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक श्री अनिल वाधवा। अनिल जी, सुर्खियों में हार्दिक स्वागत है।
धन्यवाद।
चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस व्यापार समझौते पर रिपोर्ट।
भारत और न्यूजीलैंड का मुक्त व्यापार समझौता विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अंतर्गत एक रणनीतिक रोजगार परक और लोक केंद्रित साझेदारी को दर्शाता है। इस समझौते के अंतर्गत भारत ने न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार के 95% हिस्से के लिए 70% क्षेत्रों में शुल्क उदारीकरण की पेशकश की, जिससे वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पाद और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए वीजा सुविधाएं, अध्ययन के बाद कार्य करने के अवसर और कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए केंद्र स्थापित करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। इससे रोजगार और नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने टेलीफोन संवाद में इस समझौते को ऐतिहासिक, पारस्परिक और लाभकारी बताया। अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने तथा अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड में $20 अरब के निवेश के लक्ष्यों पर सहमति जताई गई। इस समझौते से व्यापार, निवेश, संबंध मजबूत होंगे तथा दोनों देशों के बीच रक्षा, शिक्षा और संस्कृति जैसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्पल की रिपोर्ट के साथ मैं मुकेश कुमार।
अनिल जी, आपकी नजर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ ये मुक्त व्यापार समझौता कितना महत्वपूर्ण है?
आज के दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता, उसका निष्कर्ष जो निकला है, भारत की हालिया व्यापार कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लगभग एक दशक तक हमारी बातचीत ठप पड़ी थी, उसको दोनों देशों ने पुनर्जीवित किया और मेरे ख्याल से अपेक्षाकृत कम समय में एक व्यापक और संतुलित समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। तो यह FTA न केवल द्विपक्षीय व्यापार को गति देने का माध्यम है, बल्कि भारत की बदलती वैश्विक व्यापार रणनीति है और विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक भागीदारी को गहराई देने का संकेत भी देता है। इस समझौते में कई मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले, भारत न्यूजीलैंड का जो FTA है, इसका सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि इसके तहत भारत के 100% निर्यातों को न्यूजीलैंड में 0 duty एक्सेस प्रदान किया गया है और ये प्रावधान भारत के लिए असाधारण रूप से लाभकारी है। दूसरी ओर, भारत ने न्यूजीलैंड से आने वाले लगभग 95% व्यापार मूल्य को कवर करते हुए लगभग 70% टैरिफ लाइनों पर शुल्क में कटौती या क्रमिक समाप्ति पर सहमति दी है। हालांकि भारत में डेयरी और कुछ क्षेत्रीय उत्पाद जैसे हैं चीनी, प्याज, मसाले और खाद्य तेलों जैसे क्षेत्रों को समझौतों से बाहर भी रखा है। ये दर्शाता है कि सरकार ने घरेलू किसानों और ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा को प्राथमिकता भी दी है। पर इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये FTA केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, सिर्फ गुड्स तक सीमित नहीं है, सेवाओं के क्षेत्र में इसे भारत के अब तक से सबसे महत्वाकांक्षी प्रस्तावों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी जैसी पेशेवर सेवाएं हैं, इंजीनियरिंग है, कंसल्टेंसी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीय सेवा प्रदाताओं को न्यूजीलैंड में बेहतर पहुंच मिलेगी। और इसके साथ ही लगभग 5,000 अस्थायी कार्य वीजा का प्रावधान भारतीय पेशावरों और कुशल श्रमिकों के लिए एक बड़ा अवसर खोलता है। तो छात्रों के लिए शिक्षा और पोस्ट स्टडी वर्क अवसरों में वृद्धि भी इस समझौते का एक अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है, जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच लोगों से लोगों के संबंधों को और भी मजबूत करेगा। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बता दूं कि न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में लगभग $20 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। एफ्टा जो समझौता हुआ था उसके जैसे बड़े निवेश वादों की तुलना में छोटी है, फिर भी न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें, उसके आकार को देखें, तो ये उल्लेखनीय है। और ये निवेश कृषि और प्रौद्योगिकी और डेयरी, नवाचार, नवीनीकरण ऊर्जा और शिक्षा और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में केंद्रित हो सकता है।
आपने जैसा अभी बताया कि भारत ने इस समझौते में कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखते हुए संतुलन बनाने का प्रयास किया है, तो जैसे आपने डेयरी या मसालों का उल्लेख किया, तो ये संतुलन हमारे देश के हितों की सुरक्षा में कितना प्रभावी साबित होगा?
मुझे लगता है काफी प्रभावी है, क्योंकि अभी भारत ईयू के साथ में एक एफटीए की नेगोशिएशन चल रही है, तो अगर न्यूजीलैंड के साथ इस क्षेत्र को खोल दिया जाता है, या फिर जैसे बीटीए है जो यूएस के साथ नेगोशिएट हो रहा है, उसमें भी यही मुद्दा है, क्योंकि भारत ये चाहेगा कि जो कृषि का क्षेत्र है और जो डेयरी का क्षेत्र है, इसको थोड़ा धीरे धीरे खोला जाए। और इस एफटीए में जो क्षेत्र, जिसको हम कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत कम लाभान्वित है न्यूजीलैंड के लिए या बाहर रखे गए हैं, तो उनमें भी हम देखें तो डेयरी और संवेदनशील कृषि पूरी तरह से सुरक्षित रखी गई है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास एक विश्व प्रसिद्ध डेयरी इंडस्ट्री है और उसको अपेक्षित बाजार पहुंच नहीं मिल पाई है। तो इसका मतलब यह है कि जो नेगोशिएटर्स थे हमारी तरफ से, उन्होंने काफी इस क्षेत्र को महत्वपूर्णता दी है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में गैर शुल्क बाधाएं, जिसको हम बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे स्वच्छता है और तकनीकी मानक हैं, तो व्यापार विस्तार की गति को प्रभावित कर सकते हैं, जब तक कि इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर काम न हो, और भारत ने इनको भी ध्यान में रखा है।
आइए सुनते हैं कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा।
We have been very sensitive to protect all the sectors like
हम सभी क्षेत्रों की सुरक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील रहे हैं, विशेष रूप से किसानों के हितों के प्रति, जिनमें चावल, गेहूं, डेयरी, सोया और विभिन्न अन्य कृषि उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें पहुंच के लिए खोला नहीं गया है। हम इस बात के प्रति भी सचेत रहे हैं कि हमारी एमएसएमई, स्टार्टअप और नवाचार न्यूजीलैंड में बड़े अवसर प्राप्त करें। ये एक लाभकारी समझौता है और हम भारत के लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रित दृष्टिकोण और मार्गदर्शन के तहत भारत के उद्योग, कृषि और सेवाओं के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रासंगिक बन रहे हैं। हम उच्च आय और बड़े बाजार अवसर वाले देशों के साथ रणनीतिक रूप से मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक साझेदारियों पर वार्ता कर रहे हैं। ये समझौते अमृतकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि सभी 140 करोड़ भारतीय विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं।
Work towards our goal of Viksit Bharat 2047.
और इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड द्वारा भारतीय उत्पादों को शून्य शुल्क की सुविधा दी गई है, क्या इससे भारत के निर्यात को नई दिशा और गति मिलने की संभावना है?
अगर हम इसको बारीकी से देखें तो इस समझौते के सबसे बड़े लाभार्थी भारत के श्रम प्रधान और विनिर्माण क्षेत्र होंगे। जैसे हम देख लें कि वस्त्र और परिधान है, चमड़ा और फुटवेयर उद्योग को शून्य शुल्क का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे वे न्यूजीलैंड जैसे विकसित बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। और फिर देखें तो इंजीनियरिंग की वस्तुएं हैं, मशीनरी और ऑटो कंपोनेंट्स है, इनके निर्यात को भी गति मिलने की संभावना है। फिर समुद्री उत्पाद है, जिन पर पहले अपेक्षाकृत ऊंचे शुल्क थे, अब अधिक आकर्षक कीमत पर निर्यात किए जा सकेंगे। और आईटी और पेशावर जो सेवाएं हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की वैसे ही रीढ़ बन चुकी हैं, और ये एफटीए इन क्षेत्रों को नए अंतर्राष्ट्रीय अवसर प्रदान करता है। और फाइनली जो भारत के एमएसएमई सेक्टर हैं, उनके लिए भी ये समझौता महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और फिर नियम उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने में मदद कर सकते हैं।
जो आईटी और पेशेवर सेवाओं की बात है या जो सर्विस सेक्टर की बात है, उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उससे हमारे देश के युवाओं और जो हमारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनको किस तरह का लाभ हो सकता है?
जैसे मैंने पहले भी बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी है और पेशेवर सेवाएं और इंजीनियरिंग के जो लोग हैं और कंसल्टेंसी में जो लोग हैं और शिक्षा में जो लोग हैं, इन सभी क्षेत्रों में भारतीय सेवा प्रदाताओं को न्यूजीलैंड में बहुत बड़ी पहुंच अब मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि साथ साथ में एफटीए में एक प्रोविजन और भी है, 5,000 अस्थायी कार्य वीजा का प्रावधान है, तो भारतीय पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के लिए ये एक बड़ा अवसर खुलता है। और फिर छात्रों के लिए भी शिक्षा में और पोस्ट स्टडी वर्क में अवसरों में वृद्धि है। इस एफटीए का एक अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण लाभ है, क्योंकि पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो इससे जरूर बढ़ेंगे।
और इस समझौते में कच्चे माल और औद्योगिक इनपुट्स पर आसान पहुंच की बात की गई है, क्या इससे भारतीय उद्योगों की जो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी?
जरूर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग की वस्तुएं भारत एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड को, मशीनरी जो भी एक्सपोर्ट करता है और ऑटो कंपोनेंट्स है, क्योंकि न्यूजीलैंड में ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ना के बराबर है, तो इन सभी के निर्यात को गति मिलने की संभावना है। क्योंकि अभी आजकल क्या हो गया है कि भारतवर्ष में हम देखें तो इंडस्ट्री, कई सारी गाड़ियां यहां पर बननी शुरू हो गई हैं, उसके साथ साथ एक बहुत ही वाइब्रेंट ऑटो इंडस्ट्री पनप रही है। उसके साथ साथ ट्रैक्टर का जो क्षेत्र है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो स्पेशलाइज्ड जो ट्रैक्टर्स हैं भारत के, वो जापान होकर के अभी तक न्यूजीलैंड में जाते थे, अब ये डायरेक्टली जा पाएंगे क्योंकि शुल्क की कमी हुई है। तो इसके चलते ये सभी इंडस्ट्रीज को एक बढ़ोतरी जरूर मिलेगी और मार्केट ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं उसका एक अवसर प्रदान होगा।
अभी तक हमने यहां से न्यूजीलैंड जाने वाली चीजों की बात की है, जरा देखें हम कि वहां से आ क्या सकता है। न्यूजीलैंड द्वारा अगले कुछ वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना जताई गई है, क्या इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी, क्योंकि एमएसएमई का जिक्र आपने भी पहले किया था।
न्यूजीलैंड की ओर से हॉर्टिकल्चर जो है, जैसे सेब है और कीवी फल है जो उनका मेन प्रोड्यूस है, फिर ऊन है, लकड़ी है और वानिकी उत्पाद है, और फिर मांस उत्पादकों को भारतीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। ये पूरी तरह से खोला नहीं गया है क्योंकि सब पर कोटाज हैं, लेकिन फिर भी वो कोटा न्यूजीलैंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक विशाल मार्केट है और भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार में जो मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति है, उससे न्यूजीलैंड के कृषि और खाद्य निर्यातकों के लिए दीर्घकालीन अवसर पैदा हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त शिक्षा और पर्यटन सेवाओं में भी न्यूजीलैंड को भारतीय मांग से लगभग लाभ मिलने की संभावना है। फिर हमने पहले जो बात करी थी, जो न्यूजीलैंड का भारत में निवेश है, 15 वर्षों में भारत में लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर की निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है।
और अभी जो न्यूजीलैंड के साथ हमारा ट्रेड है उसके स्तर को देखें हम, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो एफटीए है इससे व्यापार की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है?
जरूर होगा, क्योंकि अभी अगर हम अपने जो बायलैटरल ट्रेड है वो करीब 1.5 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है, और फिर सर्विसेज, ये गुड्स का ट्रेड है, सर्विसेज में 2.5 बिलियन के आसपास जो सर्विसेज की एक्सचेंजेस है। लेकिन आगे चलकर जब ये क्षेत्र खुल जाएंगे तो दोनों देश ही समझते हैं कि इसमें काफी बढ़ोतरी होगी, और इनफैक्ट अभी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने तो ये कहा था कि कम से कम 3 गुना बढ़ोतरी होने की संभावना है। न्यूजीलैंड की तरफ से भी इसी तरह का एक बयान आया है, उनके प्राइम मिनिस्टर लक्सन जो है उन्होंने भी एक बयान दिया है कि इससे भारत की जो मार्केट जो खुल जाएगी उससे न्यूजीलैंड को ये अवसर प्रदान होगा कि उनके एक्सपोर्ट्स भी काफी बढ़े, और जो इन्वेस्टमेंट न्यूजीलैंड करेगा उसके साथ साथ वो सोचते हैं कि जो 4 क्षेत्र उन्होंने गिनाए हैं, इन 4 क्षेत्रों में न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के मार्केट में और जगह बनाएंगे। ये केवल एक व्यापारिक दस्तावेज नहीं है, क्योंकि भारत की जो विविधीकरण नीति है, जो डाइवर्सिफिकेशन नीति है फ्री ट्रेड में, उसका एक ये हिस्सा है, और भारत ने काफी जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको खोला नहीं है इस समझौते में, और जो भी भारत निर्यात करेगा, जो ज्यादा निर्यात न्यूजीलैंड से होगा, उसमें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे कि हमारे जो कृषि में जो कार्यरत जो लोग हैं या फिर दूसरे क्षेत्रों में जो जैसे डेयरी इंडस्ट्री है, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो बाकी एग्रीकल्चर में जो एरियाज खोले गए हैं इनमें भी कोटाज हैं, और भारत कुछ हद तक ये चीजें इम्पोर्ट भी करता है, कुछ जैसे कीवी फ्रूट का हमने उल्लेख किया और सेब हैं, ये पहले से भी बाहर से आ ही रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर एक डिमांड है, तो जो कोटा है वो उस डिमांड को पूरी करेगा और इससे प्राइसेस कम होंगे।
श्रोताओं, आशा है ये चर्चा आपको भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के महत्व और उसकी संभावनाओं को समझाने में सहायक रही। अनिल वाधवा जी, आपके बहुमूल्य समय और गहन दृष्टिकोण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में